बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ
Yeah. ಜಯಂಶಿಭಾತ್ ಪರಮಶ ಪರಿಭ್ರಾಜಕ ಆಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸದಶ್ರೀ ಶಿವ ಶ್ರೀ ಅಭಯ ಶರಣರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವಿಧಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾದಿಕಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಫೌಂಡರ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾದಿಕಿ ಜಯಂಶಿಭಾತ್ ಪರಮಶ ಪರಿಭ್ರಾಜಕ ಆಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸದಶ್ರೀ ಶಿವ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕುರ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾದಿಕಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿವಿನ ಠಾಕುರ್ಗೆ ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ್ಸಿ ಕಹೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಶಾದಿ ಶ್ರೀ ಗೌರಭಕ್ತ ಬಿಂದುಕಿ ಗಂಗಾ ಮಾಕಿ ಜಮುನಾ ಮಾಕಿ ಬ್ರಜಮಂಡಲ ಬೃಂದಾವನ ಧಾಮಕಿ ಮಾಯಾಪುರ ನವದೀಪ್ ಧಾಮಕಿ ಪುರುಷತ್ವಕೃತ ಜಗನ್ನಾಥ ಧಾಮಕಿ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿಕಿ ಗಂಧರಾಶ್ರಮ ಭಾಗವತಂಕಿ ಜಾನಿದಾಯಿ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇರ್ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಳ್ ಜಾನಿದಾಯಿ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇರ್ ಹರಿ 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 ಬೋಳ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅವದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೀರುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. अध्याय चल रहा है, इसका नाम है पुतनावर. तो हमारा गौड़िया आचार्य, कल मैंने एक आचार्य आर्काइव बोल के एक वेबसाइट है, उसमें लिखा है कि श्री भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर का सबसे प्रिय विषय है प्रहलाद महाराज का कहानी. भक्ति विनोद ठाकुर का सबसे प्रिय विषय होता है ध्रुव महाराज का कहानी. और श्री भोपाल जी सबसे प्रिय विषय था पुतनावर. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विशेष रूप से कार्तिक महीना में उस वेबसाइट में लिखा है इस तरीके से. विशेष रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस कार्तिक महीना में पूरा महीना भर ये पुतनावर कहानी को अध्ययन करते रहते थे. और हमारा गौरी आचार्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो कि कभी भी कोई भी शास्त्र का अध्ययन नहीं किए थे, कोई भी शास्त्र, क्योंकि वो निरक्षर, मतलब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं जाता था. लेकिन फिर भी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपना पार्षद बिंदु जाकर हर दिन सुबह शाम गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का कुटिया में जाकर बाबाजी महाराज को ये श्रीमद् भागवत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चैतन्य पढ़ के सुनाते थे. और गौर किशोर दास बाबाजी महाराज ऐसा एक महान संत है जो कि वो सुनकर उसका ऊपर व्याख्या कर देते थे. कोई भी शास्त्र में लिखा नहीं है कि गौर किशोर दास बाबाजी महाराज कभी अध्ययन किए, कभी अध्ययन नहीं किए थे. सिर्फ श्रवण के द्वारा उन्होंने पूरा एक एक शब्द को पकड़ कर व्याख्या कर दिया. श्रीमद् भागवत के पुतनावर कहानी स्वयं महाराज परीक्षित भी बोल रहे कि ये पुतनावर भगवान का बाल्य लीला श्रवण करने में आत्मचरित होता है, मतलब अपना जीवन को कोई इसमें सुधार सकता. भगवान का बाल्य लीला में इतनी महत्ता है. विशेष रूप से भक्ति संत सरस्वती ठाकुर और हमारा परंपरा गुरु श्री गोपाल जी ने कार्तिक महीने में विशेष रूप से इस पुतनावर का अध्ययन करते रहते थे. तो वेबसाइट में बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किए कि एक एक शब्द को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस पुतनावर अध्याय एक एक शब्द को व्याख्या कर देते थे. भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर उनके एक ग्रंथ है जिसका नाम है जयश्री. उसमें उन्होंने वर्णन किए कि मैं कार्तिक महीना शुरू का दिन से और पूरा कार्तिक महीना भर इस पुतना व्रत को एक एक शब्द को मैं अध्ययन करता था और पूरा अध्याय ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने ये पुतना व्रत पूरा अध्याय को मैंने अध्ययन नहीं किया, क्योंकि पुतना एक अनर्थ का प्रतीक है जिसके लिए अनर्थ निर्मिति किस तरीके से होना चाहिए इस पुतना व्रत अध्याय से मैंने शिक्षा प्राप्त किया। तो कोई शिष्य आके भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर को पूछने लगे कि महाराज आपने इतना महान तपस्वी होकर भी आपका जीवन में अगर अनर्थ रहे तो हमारा जीवन में क्या होगा। तो कार्तिक महीना में भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर बताया अगर किसी का जीवन में इस अनर्थ निर्मिति करना है मतलब अनर्थ को निभाना है अपना जीवन से तो विशेष रूप से इस कार्तिक महीना में ये पुतना व्रत अध्याय को अध्ययन करना चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से वेबसाइट में वर्णन है जिसके पास कंप्यूटर होगा तो आप देख सकते हैं कि एक एक आचार्य श्रीमद भागवत का कौन कौन कहानी के ऊपर ज्यादा आसक्ति थी। भक्तिविनोद ठाकुर प्रहलाद महाराज के ऊपर आसक्ति, प्रहलाद महाराज का कहानी हर समय अध्ययन करते रहते थे। तो आइए आज हम लोग अध्ययन कर लेते हैं अध्याय पुतना व्रत श्लोक संख्या 38। इसके साथ साथ आज मैं अगर समय मिले तो बीरचंद्र प्रभु जो कि नित्यानंद प्रभु का आत्मज कहते हैं जिनका जो आविर्भाव तिथि तो गौड़ीय पार्षद जिसका आविर्भाव तथा तिरोभाव होता है उनको पर जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है। तो बीरचंद्र प्रभु का नाम सभी भक्त लोग ने सुन लिए हैं जिनकी नाम से एक चक्र ग्राम जो कि नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान जिसका नाम है बीरचंद्रपुर तो वही बीरचंद्रपुर नित्यानंद प्रभु का आत्मज मतलब संतान पुत्र बीरचंद्र प्रभु का जो आविर्भाव तिथि तो समय मिले तो मैं 5-10 मिनट उनको ऊपर चर्चा करूँगा क्योंकि बीरचंद्र प्रभु एक ऐसा महान चरित्र है भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर वर्णन की कि बीरचंद्र प्रभु जो कि नित्यानंद प्रभु का आत्मज जिसको कहते हैं वो पयोधि साई विष्णु का अवतार रूप लेकर इसी कली युग में एक चक्र धाम में आपने को आविर्भूत किए थे। आज बीरचंद्र प्रभु को स्वागत करने के लिए एक से एक वैष्णव आचार्य उनको पास आते थे। श्रीमद् भागवत 10th Skandha, 6th Shloka, 10:638 यातु धन्नपि शासर्गम अबाप जननी गतिम कृष्णाभुक्ता स्तनोच्छीरा किमु गाव ओनुमातरा यातु धन्नपि शासर्गम अबाप जननी गति कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गाव ओनुमातरा यातु धन्नपि शासर्गम यातु धन्नपि शासर्गम यातु धन्नपि शासर्गम अबाप जननी गति कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गाव अनुमातरा यातु धन्नपि शासर्गम माप जननी गति
কৃষ্ণা ভুক্ত স্তন ক্ষীরা কিমু গাব অনুমাতরা যাতু ধন্য পিশা সর্গাম বাপ জননী গতি কৃষ্ণা ভুক্ত স্তন ক্ষীরা কিমু গাব অনুমাতরা
যাতু ধন্যপি যদ্যপি ও ডাইন থি স্বা উসনে সর্গম দিব্য ধাম কো অবাপ প্রাপ্ত কিয়া জননী গতিম মাতা কো পত কো কৃষ্ণ ভুক্ত স্তন ক্ষীরা চিউকি উনকে স্তনো কা পান কৃষ্ণ নে কিয়া থা কিম উ ক্যা কহা যায় গাব গইবে অনু মাতর মাতাও কি তরহ জিনোনে কৃষ্ণ কি আপনা স্তন পান করায়া কৃষ্ণ কো আপনা স্তন পান করায়া অনুবাদ তথা তাৎপর্য ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ জি কি দ্বারা শিল প্রভুপাদ কি জয়
अनुवाद। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव जैसे पूज्य व्यक्तियों द्वारा सदैव वंदनीय हैं। चूंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था और उसके डाइन होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। तो भला उन गौओं के विषय में क्या कहा जाए जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे और जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान कृष्ण को अपना दूध देती थी। तात्पर्य, ये श्लोक बतलाते हैं कि भगवान की भक्ति चाहे प्रत्यक्ष की जाए या अप्रत्यक्ष, ज्ञान से की जाए या अनजाने, वह सफल होती है। पूतना न भक्त थी न ही अभक्त। हुआ तो कृष्ण को मारने के लिए कंस द्वारा भेजी गई राक्षसनी थी, फिर भी पहले उसने अत्यंत सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और कृष्ण के पास उसी तरह पहुंची जैसे स्नेहमयी माता जाती हैं, जिससे माता यशोदा और रोहिणी ने उसकी निष्कपटता पर संदेह नहीं किया। भगवान ने इन सब बातों को ध्यान में रखा, अतः उसे माता यशोदा जैसा ही पद प्राप्त हुआ। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बतलाया है, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अनेक भूमिकाएं निभा सकता है। पूतना को तुरंत बैकुंठ लोक भेज दिया गया, जिसे कभी कभी स्वर्ग भी कह दिया जाता है। इस श्लोक में वर्णित स्वर्ग कोई भौतिक लोक नहीं अपितु दिव्य लोक है। बैकुंठ लोक में पूतना को धाय का पद प्राप्त हुआ, धातृ चिताम। जैसा कि उद्धव ने बतलाया है, गोलोक वृंदावन में माता यशोदा की सहायता करने के लिए उसे धाय तथा दासी का पद दिया गया।
मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति शापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीजितापदकमलं श्रीगुरुं विष्णवांश्च श्रीरूपं शकृजातं सहगणरघुनन्दितं तं सजीवं श्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीशखाणितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्यत्वदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं गर्दिवाचलं पुंगुं लंगयते गिरिं यत्किपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। इस अध्याय का नाम है पूतना वध, जो कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा गौरी आचार्य एक एक आचार्य के एक एक मन पसंद अध्याय रहते हैं। जैसे कि श्री भक्तिचंद्र सरस्वती ठाकुर का ये सबसे बड़ा मन पसंद अध्याय है, विशेष रूप से कार्तिक महीने में पूतना वध। तो भक्तिचंद्र सरस्वती ठाकुर हर दिन इस कार्तिक महीने में इस पूतना वध अध्याय को अध्ययन करते रहते थे। उनको अध्ययन करने का अर्थ यही था कि पूतना एक अनर्थ का प्रतीक, इस अनर्थ का प्रतीक को किस तरीके से अपना जीवन में निर्वृत्ति देना है, अनर्थ निर्वृत्ति जिसको कहते हैं, उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्री भक्ति चरण शशि ठाकुर ये हर दिन यह अध्याय का अध्ययन करते रहते थे। श्री गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज, मैंने पहले भी बताया था कि जिंदगी में कभी भी उन्होंने कोई शास्त्र ग्रंथ उन्होंने अध्ययन नहीं किए थे, क्योंकि वो निरक्षर थे। फिर भी इतना निरक्षर होने के बाद भी अपना भक्त मंडली के द्वारा हर दिन गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज श्रीमद् भागवत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल एक एक ग्रंथों का भक्त लोग आकर उनको सामने बैठकर एक ग्रंथ को अध्ययन करते रहते थे। श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज उसी अध्ययन को सुनकर एक एक शब्द को पकड़कर हर दिन व्याख्या करते रहते थे। ऐसा एक दिन रथ यात्रा का पहला दिन श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज अपना सब भक्तबिंदु को लेकर अपना कुटिया में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। इसमें बहुत ही सुंदर एक भगवत दर्शन में इसकी कहानी बहुत सुंदर आया कि जिसमें उन्होंने वर्णन की कि गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज रथ यात्रा का पहला दिन अपना भक्तबिंदु को लेकर चर्चा कर रहे थे रथ यात्रा का ऊपर। तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज कहने लगे कि देखो ये नवद्वीप धाम, इस नवद्वीप धाम में बहुत सारे जगह है जहाँ पे अच्छा अच्छा रथ यात्रा निकालते हैं, तो मेरा मन में विश्वास है कि आप लोग जरूर कल इस रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो उसमें वर्णन किया कि गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज उसी भक्त को परीक्षा लेने के इसी तरीका से वर्णन किए। तो सब भक्त लोग ने जो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का मुखारो बिंदु से ये कहानी सुन लिए कि अरे स्वयं बाबा जी महाराज कह दिए कि कल रथ यात्रा में सबको दर्शन करना है, जगन्नाथ जी को कृपा लेना है। तो दूसरा दिन रथ यात्रा का उत्सव, तो सब लोग चले गए रथ यात्रा में दर्शन करने के लिए। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के पास कोई नहीं आया ग्रंथ अध्ययन के लिए। तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बड़ा दुखी हो गए। दुखी होकर अपना कुटिया से बाहर में आए। बाहर में आकर उच्च स्वर में कह रहे कि देखो इतना दिन तक जितने सारे भक्त आए थे ना, ये सब ढोंगी है। ढोंगी क्यों ढोंगी है? जिसका भागवत का ऊपर कोई श्रद्धा नहीं है वो ये रथ यात्रा जाते हैं जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए नहीं जाते। जगन्नाथ जी का इतना बड़ा बड़ा आँख है, सामने एक रेड कलर का जो सिंबल है उसी सिंबल के द्वारा जगन्नाथ जी सबको दर्शन देते हैं, कृपा बरसाते हैं, लेकिन उसी जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए नहीं गए कोई भी। गए किसके लिए? न जितने सारे युवक युवतियां आते हैं उनको आकर्षित करने के लिए, उनको पर आसक्ति का कारण ये ग्रंथ भागवत छोड़कर वो लोग पहुंच गए उधर, जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए नहीं गए थे। तो बाबा जी महाराज बड़ा दुखी होकर अपना कुटिया में बैठकर बड़ा उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन चालू किए थे। शाम हो गए, रथ यात्रा खत्म हो गए, भक्त लोग आए तो बाबा जी महाराज किसी के साथ कुछ बातचीत नहीं कर रहे थे। इस कहानी को बहुत अच्छा है एक अभय चरण बोल के टीवी सीरियल आए थे, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन दिया है। तो बाबा जी महाराज दुखी होकर किसी के साथ वार्तालाप नहीं कर रहे, तो भक्त लोग समझ गए कि बाबा जी महाराज दुखी है। तो एक भक्त आकर बाबा जी महाराज के दंडवत प्रणाम किया और पूछने लगे कि बाबा जी महाराज शायद आपने हमारा ऊपर दुखी है क्योंकि हम लोग सब रथ यात्रा में पहुंच गए। तो बाबा जी महाराज पूछने लगे आपने रथ यात्रा में गए, आप जरा मेरे को बताओ तो रथ यात्रा दर्शन करके आए? बोलते हाँ दर्शन करके आए। बोलते क्या क्या दर्शन किए? बोलते बहुत सारे भक्त लोग आए, बड़ा धूमधाम से कीर्तन हुए, प्रसाद खिलाए, सब कुछ किए। बोलते आपने क्या दर्शन किए? बोले आपने क्या दर्शन किए? तो भक्त लोग ने पूछने लगे, अरे एक भक्त दूसरे भक्त को देख रहा है, कोई मुंडी हिला रहा है नीचे, तो पूछने लगे कि आप बताओ आपने तो रथ यात्रा दर्शन करके आए, जगन्नाथ जी के निश्चित रूप से आप दर्शन किए हो? बोलते हाँ दर्शन किया। बोलते क्या दर्शन किए जगन्नाथ जी को बताओ? तो भक्त लोग ने एकदम चुपचाप हो गए। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज पूछने लगे कि आपने जगन्नाथ जी का इतने बड़े बड़े आँख को देखकर आए? बोलते हाँ बड़ा बड़ा आँख को देखकर, विग्रहों को देखा बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा हूँ। तो बोलते अच्छा आपने तो देखा जगन्नाथ जी का इतने बड़े बड़े आँख को आपने देखा? बोलते हाँ देखा। बोलते उसी आँखों का कुछ अब वर्णन मेरे को सुनाओ। तो भक्त लोग सब अपना मुंडी हिला दिए नीचे। बोलते अरे बाबा जी महाराज इसी तरीके से प्रश्न पूछा कि इसको जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, हम लोग तो गए दर्शन किए आ गए, लेकिन जगन्नाथ जी के आँख का विशेषत्व क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी? श्री प्रभुपाद जी ने बताया व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट द जगन्नाथ आईज। तो जगन्नाथ जी का जो ये आई बल, इसका स्पेशलिटी क्या है? जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज पूछने लगे गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज, तो आपना भक्त बिंदु ने मुंड हिला दिए नीचे, कोई प्रश्न का जवाब दे नहीं पाए। तो बाबा जी महाराज कहने लगे मतलब आप लोगों ने जो गए थे ना जगन्नाथ रथ यात्रा में, तो जगन्नाथ जी के ऊपर आपका कोई आसक्ति नहीं था, आसक्ति था किसके ऊपर? ये इतने सारे युवक युवती आए उसके ऊपर आसक्ति का कारण आपने रथ यात्रा उत्सव में गए। तो इसी रथ यात्रा में जाकर इसी भावना में अगर कोई गए रथ यात्रा में तो उसको जगन्नाथ जी का फल नहीं मिलता। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे इतना साल तक हम लोग जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे हैं लेकिन जगन्नाथ जी के स्पेशल आई में क्या विशेषत्व, आंखों में क्या विशेषत्व? तब जगन्नाथ दास बाबा जी गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज बताए कि आपने जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए गए थे, विघ्नों को दर्शन किए, बताए अच्छे तरीके से किया हूँ, बताए उसका स्पेशलिटी बताओ, उसका विशेषत्व क्या है आप बताओ। तो कुछ बता नहीं पाए। तब बाबा जी महाराज ने बता दिए कि उनका आंखों का विशेषत्व क्या है, जो रेड कलर का आईज होता है, जो रेड कलर का एक संबंध रहता है उसका विशेषत्व क्या है। इसके लिए मैंने कह दिया कि आप लोगों ने जो जाते हो जगन्नाथ रथ यात्रा में, जगन्नाथ जी के ऊपर कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ गए उधर कोई आसक्ति का कारण। तो बाबा जी महाराज जिंदगी में कभी शास्त्र अध्ययन नहीं किए थे क्योंकि निरक्षर व्यक्ति होने का कारण कोई शास्त्र अध्ययन करना उनके लिए मुश्किल होता था। फिर भी एक एक शब्द जब उन्होंने सुनते रहते थे उसी शब्द को पकड़ कर व्याख्या कर देते थे। भक्ति संत शशि ठाकुर भी इसी तरीका से इसी पुतनावाद अध्याय को विशेष रूप से कार्तिक महीने में उन्होंने अध्ययन, कार्तिक महीने में अध्ययन करने का विशेष तात्पर्य यही था कि पुतना एक अनर्थ का प्रतीक है, चेत गुरु जिसको कहते हैं, इस चेत गुरु का प्रतीक है पुतना। चेत गुरु का अर्थ था कि तत्कालीन समय में चेत गुरु मतलब एक जिसको भक्तिविनोद ठाकुर ने चेत गुरु का एकदम डायरेक्ट विश्लेषण किया इस तरीके से कि चेत गुरु का जो स्वाभाविक अर्थ होता है जिसको कहते हैं कि पाखंडी गुरु, भंड गुरु, मतलब जो कि अपना गले पे तुलसी माला डाल दिए, बहुत ही सुंदर तिलक की, बहुत ही सुंदर शिखा रखे है लेकिन दूसरे तरीके से भावना को आपने के जीवन में प्रकट कर दिया, उसको कहते कि चेत। तो देखिए पुतना पहले आए थे किसके कारण ना, वो आए थे कि उनको मानना है, कंस के साथ वार्तालाप कर लिया उन्होंने, जब कंस ने कह दिया कि जाओ आप जाके उनको किसी तरीके से उसको निधन कर दो, तो उन्होंने बातचीत कर ली ठीक है। तो तब पुतना ने सोच ली कि अरे ये जिसका घर में मैं जा रहा हूं ये तो धार्मिक व्यक्ति है, तो धार्मिक व्यक्ति का घर में धार्मिक वातावरण में मेरा कार्यकलाप स्वभाव नहीं देता। धार्मिक व्यक्ति का घर जिसकी नंद महाराज के घर में मैंने आया हूँ, ये तो धार्मिक व्यक्ति निश्चित रूप से, ये धार्मिक व्यक्ति होने के कारण भगवान का पूजा वगैरह करते रहते हैं, तो इसी वातावरण में धार्मिक वातावरण में मेरा कोई कार्यकलाप शोभा नहीं देते। फिर भी मैंने वचन दे दिया हूँ कंस को तो मेरे को जाना है, इसके लिए मैंने इतना सुंदर रूप लेकर मैंने आया, इतने सुंदर रूप के कारण जिसमें प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि डायनी, मतलब डायनी का अर्थ होता है जे एक बहुत ही सुंदरी महिला जो कि अपना बल के द्वारा अपना शक्ति के द्वारा उड़ भी सकते हैं, बड़ा सुंदर रूप प्रकटित कर सकते हैं, इसको कहते हैं कि डायनी। एक समय भारत में भी ऐसा था कि बहुत सारे डायनी, मतलब डायनी का अर्थ होता है जो कि दूसरे को खून चूस लेते हैं। भोपाल जी इसमें वर्णन किए कि डायनी का जो मूल अर्थ होता है वो है किसी को खून चूसने का। देखिए पुतना को इसका पहला दिन तत्व बता रहे थे कि सुखदेव को सही बात, पुतना को बहुत सारे नाम दिए, आत्मघातिनी, बाल रक्षिणी, पुतना घातिनी, बहुत सारे नाम है ऐसा। और इसमें प्रभुपाद जी बताया कि डायनी का अर्थ होता है कि जो सीधा किसी को विशेष रूप से कोई बच्चा को खून पी लेते हैं उसको कहते हैं कि डायनी। और डायनी का एक विशेष गुण था कि वो आकाश में उड़ सकते थे, एक जगह से दूसरे जगह में, जैसे कि आज का होता है ना कि प्लेन में जाना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है, फटक से आप पहुंच जाओ। तो डायनी इसी तरीके से एक शक्ति प्राप्त की थी जिसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह में फटक से जा सकते हैं और बड़ा सुंदर रूप ले सकते हैं। तो उतना डायनी रूप लेकर जब आए उनका घर में तो सब लोग प्रभावित हो गए, अरे इतने सुंदर महिला आए, देखो कितने खूबसूरत है, अपना बच्चा को आए दूध पिलाने के लिए, अपना बच्चा को आए आलिंगन करने के लिए, शुभम आके अपना बच्चा को गोद में ले लिए और अपना स्तन से दूध पिलाना चालू कर दी उन्होंने। जब उन्होंने इसी तरीके से चालू की तो सब लोग सोच लिए कि अरे निश्चित रूप से स्वयं लक्ष्मी देवी आए नारायण को दर्शन करने के लिए आए। तो कोई भी उनका मन में कोई भी संदेह, कोई भी डाउट, कुछ भी किसी प्रकार भी डाउट नहीं आया किसी का मन में। लेकिन भगवान अंतर्जामी, भगवान को सब कुछ पता है कि किसके कारण आए। भगवान को पता था कि ये जो आए ये मेरे को हत्या करने के लिए आए, लेकिन मैं तो इसको एक सेकंड में खत्म कर सकता हूं, एक सेकंड भी नहीं लगता है मेरे को। जिसके लिए जब उन्होंने आए उसी रूप देखकर भगवान अपना आंख को बंद कर दिए थे कि इसी रूप को मैं देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी भगवान इतना कृपालु, जब उन्होंने अपना स्तन से दूध पिलाना चालू कर दी थी तब भगवान ने सोचा जिसका जो कि मेरे को अपना स्तन से दूध पिला है, तमो तमो मातृवत। भक्तिविनोद ठाकुर इसके ऊपर बहुत ही सुंदर वर्णन किए, ये मेरा मातृवत, मतलब ये मेरा माता का समान है। तो जब माता का समान है इसको मैं निधन नहीं कर सकता। अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने भगवान का सेवा किया, मन में उनका विचार नहीं था कि मैं कुछ सेवा करूं, लेकिन अप्रत्यक्ष भाव से, जैसा कि तात्पर्य में बताया कि जाने और अनजाने, अप्रत्यक्ष रूप से पुतना ने भगवान का सेवा, जिसके लिए भगवान उसको कृपा कर दी कि भगवान का धाम तक लेकर गए और जशोदा माता का दासी भी बना दी। तो गोपा जी बताते जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सेवा की, जो कि चिन्मय धाम तक पहुंच सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करने के बाद भी, और जो कि सीधा भगवान का सेवा कर रहे उसको हाल क्या हो सकता है। जैसे गोपियां ने भगवान का सीधा सेवा करते हैं, डायरेक्ट सेवा जिसको बोलते, कृष्ण को अपना पुत्र सोच लेते हैं, कोई अपना पोती सोच लेते हैं, कोई अपना मित्र सोच लेते हैं। तो इसी भावना से, इसी भक्ति भाव से कोई अगर भगवान को अपना मित्र सोचते हैं, अपना पुत्र सोचते हैं, अपना पति सोच लेते हैं, तो इसी भावना को पकड़कर भगवान, क्योंकि भगवान भावग्राह जनार्दन, भगवान आपको भाव को स्वीकार कर लेते हैं। आपने किस तरीके से भगवान को पूजा कर रहे हैं वो बड़ा बात नहीं है, लेकिन किसी भाव से आप कर रहे हैं, भाव को भगवान स्वीकार करते, जिसके लिए भगवान का और एक नाम है भावग्राही जनार्दन। तो पुतना आई थी भगवान को निधन करने के लिए, लेकिन आकर उन्होंने अप्रत्यक्ष भाव से भगवान को अपना स्तन से दूध पिलाया। तो भगवान उसी भावना को स्वीकार करके पुतना को लेकर गए, भावे ना भगवान का धाम, चिन्मय धाम में लेकर गए। सिर्फ ऐसे धाम में लेकर जाकर भी सेवा में भी नियुक्त कर दी, सेवा दासी बना दिया। तो गोपाल जी वर्णन कर रहे कि जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को सेवा करने से भगवान का धाम तक पहुंच सकते हैं, और जो कि सीधा भगवान का सेवा करे उसका क्या हाल हो सकता है। जैसे कि गोपियां, गोपियां ने भगवान को सेवा की डायरेक्ट रूप से, कोई पोती रूप से सेवा किए, कोई अपना बेटा रूप से सेवा किए, कोई मित्र रूप से सेवा किए। अपना घर में पोती बच्चे को छोड़कर आकर भी भगवान को सेवा कर, तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति भगवान को सेवा करे तो भगवान निश्चित रूप से उनको हाथ को पकड़कर लेकर जाएंगे भगवान का धाम में, और भगवान का धाम में लेकर से ऐसा नहीं रख देंगे कि भगवान के सेवा के साथ भी उसको युक्त करा देंगे, नियुक्त कर देंगे टू बी कंटैक्ट। तो भगवान ने ओरिष्टासुर को वध की थी, तो ओरिष्टासुर को वध करने का विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन किया भागवत में कि दशम अध्याय में, दशम स्कंद में 36 अध्याय में विष्णु चक्रवर्ती पाद 20 श्लोक में इसका वर्णन किया कि किस तरीके से राधा कुंड का उत्पत्ति हुआ। भगवान ने ओरिष्टासुर को वध की। ओरिष्टासुर को वध करने के बाद विष्णु चक्रवर्ती पाद वर्णन कर रहे कि अपना अहंकार वशत जब भगवान ने ओरिष्टासुर को वध करके आए, क्योंकि ओरिष्टासुर विष रूप से भगवान ने उसको वध किया। जब उनका मन में अहंकार आ गए, भगवान का मन में अहंकार आए तो उन्होंने आए राधा रानी और गोपिया के पास, देखो मैंने ओरिष्टासुर को वध करके आ गया। तो विष्णु चक्रवर्ती पाद इसके वर्णन कर रहे कि भागवत का 36 अध्याय में दशम स्कंद में 20 श्लोक में उन्होंने वर्णन किए कि किस तरीके से सहस्र उपपादन। आज विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर का टीका के ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत ही सुंदर टिप्पणी बताया कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ये दोनों का सहस्र उपपादन कथोपकथन, मतलब ये श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का जो वार्तालाप ये सहस्र उपपादन, मतलब मजाक से बातचीत करना चालू की। तो वर्णन कर रहे शास्त्र में कि भगवान आए तो ओरिष्टासुर को वध करके जब आ गए सामने, तो भगवान का मन में कुछ अहंकार आ गए, तो गोपी और राधा रानी सब एक साथ बैठी थी, कहने लगी देखो मैंने ओरिष्टासुर को वध करके आए। तो राधा रानी कहने लगी आज तुमको दर्शन करना नहीं चाहिए मेरे को। बोलते क्यों, अरे मैंने इतना बड़ा एक असुर को वध करके आया हूँ और आप मेरे को बोलते कि मेरे को दर्शन नहीं करोगे। बोलते नहीं, क्योंकि आपने पाप कर्म किए हो। बोलते किस तरीके से पाप कर्म किए हो? बोलते आपने भले भी असुर को वध किए हो लेकिन उसी असुर विष रूप से आए, जैसे कि इंद्र ने ब्रह्म हत्या पाप की थी उसी तरीके से उसको भोगना पड़ा, तो आप भी उसी तरीके से विष रूप से इसी असुर को आपने वध किए हो, तो आपको भी कुछ करना है। तो क्या करना है आपको? बोलते सर्व तीर्थ जल के द्वारा आपको नहाना है। तो भगवान कह दिए कि सर्व तीर्थ जल के द्वारा अगर मेरे को नहाने, क्या बड़ा बात है मेरे लिए, मैं तो फटक से सब तीर्थों को एक साथ बुला लेता हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। बोलते नहीं, आप जाने से नहीं होगा, हमारा सामने आपको सर्व तीर्थ को नहाना है। तो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन कर रहे थे तीसरे श्लोक में कि जब भगवान जाने चालू किए तब राधा रानी कहने लगे नहीं नहीं आप चला जाओगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपने इसी सर्वतीर्थ को बुलाकर आपने नहा लिए। आपको अगर शुद्धिकरण करना है तो सर्वतीर्थ को एक साथ रहकर आपको उसी में नहाना है। तो भगवान कहते कि ठीक है, ये कोई बड़ा बात नहीं है मेरे लिए, मैं तो एक सेकेंड में सब तीर्थों को बुला लेता हूँ। तो भगवान ने डांड पायर में एक भूमि को उन्होंने एक छोटा एक होल बना लिया। जब होल बनाए तब सब तीर्थ को उन्होंने बुला लिए, बोलते देखो मैंने सब तीर्थ को बुला लिया उस हाथ में। तब राधा रानी कहने लगे अरे ये तो आप स्वयं देख रहे हो कि सब तीर्थ को आपने बुला लिए हो, लेकिन मेरे को तो कुछ दर्शन ही नहीं मिला कौन कौन तीर्थ को आपने बुलाया। तब भगवान कह दिए ओ ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ठीक है, मैं एक एक तीर्थ को मैं बुला लेता हूँ साथ में, एक एक तीर्थ का जल को मैंने बुला लेता हूँ साथ में। तो भगवान बाद में एक एक तीर्थ को बुलाए, सब आए राधा रानी के सामने आकर धन्यवाद प्रणाम किए कि मैंने गोदावरी हूँ, मैंने नर्मदा हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं सोनक हूँ, इसी अच्छे अच्छे तरीके से उन्होंने सब कुछ वर्णन कर दिया। तो पूरा कुंड पूर्ण हो गए, तब उसमें भगवान ने नहा लिए। नहाने के बाद जब आए फिर कहने लगे कि देखो मैंने नहा लिया, इतने सुंदर पानी है, आप लोग भी जाओ उसमें जाके नहाओ, आप तो ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने लिए कोई भी धार्मिक कार्य अभी तक किए नहीं हो, आपको कुछ करना है, आपको अगर इसी तरीके से अपना जीवन को सुधारना है तो मैंने जो कुंड बनाए हूँ इसी कुंड में जाकर आप नहाकर आ जाओ। राधा रानी कहने लगे नहीं नहीं नहीं, वो कुंड का जो पानी है ना वो शुद्ध नहीं है। बोलते क्यों शुद्ध नहीं है, मैंने तो नहाया उसमें। बोलते अरे आपने नहाया ना, लेकिन आपने तो किसको निधन करके आए, तो उसी पाप उसमें अभी भी वर्तमान है, उसमें हम लोग नहीं नहाएंगे, हम लोग अलग एक कुंड बना लेते हैं। बोलते अरे आप लोग अलग कुंड बना लोगे, इसी कुंड में पानी इतने शुद्ध है, आपका चित्त शुद्ध भी हो सकता है इसमें। तब राधा रानी कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम लोग एक अलग कुंड बना लेते हैं। बोलते ठीक है तो अब अलग कुंड बना लो। जब ओरिष्टासुर को भगवान ने निधन की थी, ओरिष्टासुर का जो खूर मतलब जो एक पायर का स्तंभ था उसी जगह में एक छोटा होल था, तो राधा रानी जाकर देख ली कि उसी जगह में एक छोटा होल है। तो राधा रानी अपना सौतो कोटि गोपियों को लेकर जाकर उसी जगह से एकदम मिट्टी निकल के एक ही बहुत ही सुंदर एक कुंड बना ली। जब उन्होंने कुंड बनाए तो कुंड बनाने के बाद देखा कि उसमें कुछ पानी तो है ही नहीं, तो भगवान अपना सहस्य वदन में भक्तवृंद ठाकुर बहुत सुंदर इसका वर्णन की है कि अपना सहस्य वदन मुरली मोड़ धन, कहते कि भगवान हंसने लगे कि अरे देखो आपने कुंड बना ली इतने सुंदर, लेकिन इसमें कुछ पानी नहीं है, तो आप एक काम करो, मैंने जो कुंड बनाया ना उसी कुंड का पानी उसमें डाल दो, डाल के उसी में आप नहा लो। बोलते नहीं नहीं नहीं, आपका कुंड का पानी जो है ना, आपने जो कुंड बनाया उसी कुंड का पानी शुद्ध नहीं है, क्योंकि आपने उसमें पाप भरे हुए है, उसमें हम लोग नहीं नहाएंगे, इसी जगह में हम लोग पानी लेकर आते हैं। बोलते कहाँ से लेकर आओगे? बोलते मैं लेकर आ जाता हूँ पानी। तब भगवान ने देखा अरे ये तो महा मुश्किल है, इतने पास इतना 100 करोड़ गोपियाँ हैं, सबको लेकर अगर जाए तो कहाँ कहाँ से पानी लेकर आएंगे पता नहीं। तो भगवान क्या की ना, एक तीर्थ एक दिव्य पुरुष को सृष्टि की। उसी दिव्य पुरुष जब आए अपना श्याम कुंड से जब आ गए सामने, तो दिव्य पुरुष आकर राधा रानी को धन्यवाद प्रणाम की। तो प्रणाम करने के बाद इसका बहुत सुंदर विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन किए भागवत का दशम स्कंद 36 अध्याय में इसका वर्णन है कि जब वो आ गए साथ में दिव्य पुरुष आकर राधा रानी को प्रणाम भी की, और राधा रानी को प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि आप अगर मेरे को कृपा करोगे तो मैं इसी कुंड में रह सकता हूँ। तो बोलते आपको क्या चाहिए? बोलते कि आप बोलोगे, अगर आपको कृपा है तो आपका कुंड में हम लोग अवस्थान कर सकते हैं। तो राधा रानी ने अपना गोपियों के साथ वार्तालाप की, वार्तालाप करने के बाद वो मान ली, और मानने के बाद उसी तीर्थ का जो जल है, जब राधा रानी का जब परमिशन मिल गए, परमिशन मिलने के बाद उसी श्याम कुंड का जल जाकर राधा कुंड में पहुंच गए थे। जब राधा कुंड का इतने सारी जल देखकर भगवान ने खुश हो गए, खुश होकर कहने लगे कि देखो आप जितना मेरा प्रिय है, आपसे भी अधिक प्रिय है ये राधा कुंड का पानी, ये राधा कुंड का पानी ये हमारा से ज्यादा अधिक विश्व में परिचित होगा इसका, और कोई भी अगर आकर इसी राधा कुंड में ना आए। प्रभुपाद जी इसमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति, जितने भी पाखंडी व्यक्ति हो, अगर इसी राधा कुंड में आकर अगर नहा लिए तो अपना दिव्य देह प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी पाखंडी व्यक्ति हो आकर उसी राधा कुंड में नहाए ना, तो अपना दिव्य देह को प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी उसका शक्ति है। तो आज 5 मिनट समय है, मैं बीरचंद्र प्रभु को थोड़ा बता देता हूँ। बीरचंद्र प्रभु नित्यानंद प्रभु का आत्मजो मतलब संतान है, जिसका नाम से बीरचंद्रपुर मतलब नित्यानंद प्रभु जन्म स्थान। बहुत सारे भक्तों दर्शन भी किए हैं एकचक्र धाम। एकचक्र धाम का और एक नाम है बीरचंद्रपुर, जो बीरचंद्र नित्यानंद प्रभु का आत्मजो संतान। अरे बीरचंद्र प्रभु जाह्नवा माता का शिष्य है, और वसुधा का गर्भजात है। भक्तिशंद सरस्वती ठाकुर वर्णन की बीरचंद्र प्रभु पयोधी साई विष्णु का अवतार, और श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिन्न हृदय विग्रह यह है बीरचंद्र। तो बीरचंद्र प्रभु जब पहली बार एकोचक्र को छोड़कर वृंदावन जाने के लिए अपना मन में विचार की, बहुत ही सुंदर इसका लीला है, मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ कि बीरचंद्र प्रभु जीवन में जब पहली बार प्रभावित हो गए थे कि मेरे को थोड़ा वृंदावन दर्शन करना है, तो अपना माता वसुधा के पास जाकर पूछने लगे कि माता आप मेरे को अनुमति दे दो कि मेरे को थोड़ा जाना है वृंदावन दर्शन करने के लिए, छोटे बच्चे हैं। तो स्वाभाविक रूप से माता चिंतित हो गई कि मैं किस तरीके से इसी छोटा बच्चे को भेज दूं वृंदावन। तो भेजने के लिए उन्हें थोड़ा सोचने लगे। तब माता वसुधा पूछने लगे कि ठीक है बेटे, आपका मन में जो विचार है वृंदावन जाने का, मैं तो आपको रुका नहीं सकता, किसी ना किसी तरीका से तो आप वृंदावन पहुंच ही जाओगे जब आपका मन में ये विचार आ गया, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सोचने दो। तो माता वसुधा सोचने लगी, तो बीरचंद्र प्रभु दुखी हो गए कि अरे माता वसुधा को मैंने अपना माता को मैंने पूछने लगे लेकिन उन्होंने ना बोल दिए मेरे को। तो तीसरा दिन फिर गए बीरचंद्र प्रभु अपना माता के पास, माता आपको मैंने बताया था कि मेरे को जाना है, कहाँ पे जाना है, वृंदावन जाना है, वहां पे स्वयं बहुत सारे भक्त लोग आए, मेरे को वृंदावन दर्शन करना है। तो माता वसुधा कहने लगे कि ठीक है आप जा सकते हो। किस तरीके से आप जाओगे? भक्तिविनोद ठाकुर इसके ऊपर वर्णन कर रहे हैं, बीरचंद लोहिया तबे षष्ठी रो वाहन, बीरचंद लोहिया तबे, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इसका वर्णन किया भक्तिविनोद ठाकुर, बीरचंद लोहिया तबे षष्ठी रो वाहन, मतलब बीरचंद का मन में विचार था कि मेरे को वृंदावन जाना है, माता का परमिशन भी मिल गए, लेकिन किस तरीके से जाना है उनको कुछ पता नहीं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन मन में विचार की कि मेरे को वृंदावन दर्शन करना है। बीरचंद लोहिया तबे षष्ठी, बहुत ही सुंदर नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर इसको वर्णन किए हैं कि तब उन्होंने एक चक्र गांव में उसी समय बहुत सारे बड़ा बड़ा बड़े बड़े पेड़ था, आज भी है एक चक्र में एक जगह है, जिन्होंने गए वो दर्शन किए उनको जरूर पता होगा, जिसका नाम है हाटू गोड़ा। हाटू गोड़ा जहां पे बैठकर स्वयं नितंद प्रभु अपना लीला विलास की थी, तब उसी जगह में हाटू गोड़ा में एक बहुत ही सुंदर पेड़ है जिसको नाम है अश्वत्थ, मतलब बट बट वृक्ष। तो बीरचंद प्रभु बीरचंद्र प्रभु जब उनका मन में ये विचार आए कि मेरे को जाना है, तब कोई साथ में नहीं था, तो उसी हाटूगुड़ा में जाकर बहुत ही सुंदर एक वृक्ष है जिसका नाम है अश्वत्थ वृक्ष, जिसका अपभ्रंश आज भी है, जिन्होंने हाटूगुड़ा दर्शन किए उनको पता होगा, यह हाटूगुड़ा में एक बहुत ही सुंदर तालाव है और तालाव का नीचे एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जहां पे बैठकर नित्यानंद प्रभु अपना लीला विलास कर रहे थे। उसी तालाब का अंदर जो मंदिर है उसको पता नहीं है कि उसका अंतिम कहां तक है। एक बार भारत सरकार ने उसी तालाब में जितने पानी है सब पानी को निकाल दिए थे, पानी निकालने के बाद खुदने लगे कि ये मंदिर का शुरू कहां से हुआ था, लेकिन एक महीना डेढ़ महीना तक वो पूरा एकदम खनन किए थे, खनन कार्य चालू किए भारत सरकार का तरफ से, लेकिन फिर भी नहीं मिला कि यह मंदिर शुरू कहां से है। आज भी वो मंदिर है जिसका नाम है हाटू गोड़ा, जिन्होंने गए उन्होंने जरूर दर्शन करके आए, तो उसी हाटू गोड़ा में जाकर बीरचंद्र प्रभु उसी जगह से एक वृक्ष से एक मतलब एक छोटा वृक्ष ले लिए, एक एक पार्ट एक शाखा जिसको बोलते, तो लेकर आए, तो उसको लेकर कहते कि नित्यानंद नित्यायरो कृपा होइले ब्रजे राधा कृष्ण पर। तो उनका मन में विचार था जब तक मेरा पिताजी का कृपा नहीं है, नित्यानंद प्रभु का कृपा मेरे को नहीं है, मैं जाकर वृंदावन में कुछ कर नहीं पाऊंगा, जिसके लिए नित्यानंदेरो स्वरूप है वृक्षेर प्रकाश। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन किए कि नित्यानंदेर स्वरूप है वृक्षेर प्रकाश, मतलब स्वयं नित्यानंद को लेकर मैं जा रहा हूं कहां पे, ना ब्रज धाम वृंदावन, और नित्यायरो करुणा होइले ब्रजे राधा कृष्ण पावे। जब तक नित्यानंद प्रभु आपको कृपा नहीं करेंगे तो आप राधा कृष्ण का कृपा मिल नहीं सकते। तब उसी नित्यानंद प्रभु का प्रतीक लेकर बीरचंद प्रभु गए कहां पे, ना वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम में गए, सब लोगों ने उनको बड़ा अच्छे तरीके से स्वागत पकड़े किए, कृष्णदास को विराज गोस्वामी स्वरूप से बहुत सारे भक्त लोगों ने उनको अच्छे तरीके से स्वागत किए। और ये बीरचंद प्रभु जाह्नवा माता से दीक्षा ली थी, जाह्नवा माता का शिष्य है बीरचंद प्रभु। शास्त्र में वर्णन है भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन की कि बीरचंद प्रभु का तीन पुत्र था। पहला पुत्र का नाम है गोपी जन बल्लभ। इस गोपी जन बल्लभ एकदम जीवन का शुरू से धार्मिक, किस तरीके से धार्मिक थे, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन की कि गोपी जन बल्लभ बीरचंद प्रभु अपना हाथ में इस गोपी जन बल्लभ को सब कुछ सिखाए धार्मिक पाठ, किस तरीके से भगवान को पूजा करना है, किस तरीके से भगवान को सिंगर करना है, तो अच्छे तरीके से उसे सिखाया गोपी जन बल्लभ।
और दूसरा पुत्र का नाम है राम कृष्ण और तीसरा का नाम है रामचंद्र। तो वीरचंद्र प्रभु का तीनों पुत्र, तो तीनों पुत्र में पहला जो पुत्र है इसका नाम है गोपीजन वल्लभ, जिन्होंने वीरचंद्र प्रभु अपना हाथ में उनको सब कुछ सिखाया। और वीरचंद्र प्रभु का एक सेवित विग्रह था जिसका नाम है मदन गोपाल। जिस मदन गोपाल विग्रह वीरचंद्र प्रभु जीवन का अंतिम दिन तक उनको सेवा की। किस तरीका से सेवा की न, जब वीरचंद्र प्रभु ज्यादा उम्र हो गए थे कुछ सेवा नहीं कर पाते थे, फिर भी अपना हाथ में पुष्पहार बनाकर इसी मदन गोपाल विग्रह को अर्पित करते थे रेगुलर। जीवन का जब अंतिम मुहूर्त पहुंच गए वीरचंद्र प्रभु का, जब एक दिन उन्होंने सोच ली कि मेरे द्वारा संभव नहीं हो रहा है इसी विग्रह को सेवा करने का, तब अपना ज्येष्ठ पुत्र गोपीजन वल्लभ को बुलाए। शास्त्र में वर्णन किए कि जब गोपीजन वल्लभ आए सामने तो वीरचंद्र प्रभु अपना हाथ में उसी विग्रह को गोपीजन वल्लभ का प्रभु का हाथ में अर्पित कर दिए थे। और गोपीजन वल्लभ प्रभु उसी मदन गोपाल विग्रह को लेकर, जिस विग्रह आज भी वर्तमान है पश्चिम बंगाल में, एक जगह है जिसका नाम है वर्धमान जिला, जिस वर्धमान जिला में एक गांव है, वर्धमान स्टेशन से थोड़ा आगे जाना पड़ता है, उसका नाम है गोपीजन वल्लभपुर, जहां पे आज भी वो विग्रह वर्तमान है। वीरचंद्र प्रभु अपने हाथ में सिखाए अपना बेटा को कि इस तरीके से मदन गोपाल को आपको सिखा। जीवन का अंतिम दिन तक वीरचंद्र प्रभु ने उसी विग्रह को सेवा की। एक पुष्प मिलता है बंगाल में आज भी, जिस पुष्प के द्वारा हर दिन वीरचंद्र प्रभु मदन गोपाल को सेवा की। जिस पुष्प का नाम है टगर, टगर मतलब एक सफेद कलर का पुष्प होता है जिसको पता है, टगर फूल जिसको बोलते हैं, तो उसी टगर फूल ये मदन गोपाल का सबसे प्रिय होता था। तो वीरचंद्र प्रभु एक दिन उन्होंने सोचने लगे कि अरे आज तो मेरे को टगर नहीं मिला, तो टगर का बाद में उन्होंने कुछ ब्लू कलर का दूसरा एक फूल लेकर आया जिसको नाम है नीलकंठ। भक्ति विनोद ठाकुर इसके ऊपर वर्णन कर कि नीलकंठ एक पुष्प होता है जो कि शिव जी का सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि शिव जी का और एक नाम है नीलकंठ। तो वीरचंद्र प्रभु नीलकंठ फूल लेकर आए साथ में, लेकिन उनका मन में ये आ गए कि अरे मैंने हर दिन टगर पुष्पों के द्वारा भगवान का सेवा कर रहा थी, लेकिन आज किस तरीके से ये फूल नहीं मिला, नीलकंठ आ गए साथ में। तब बड़ा दुखी भाव से उन्होंने भगवान का पुष्पहार बनाना चालू किया। जब पुष्पहार बनाए, पुष्पहार को शुद्धिकरण के बाद जब भगवान का गला में चढ़ा दिए, वीरचंद्र प्रभु ने देखा कि उसी नीलकंठ फूल और नील कलर ब्लू कलर नहीं है और पूरा सफेद कलर, क्योंकि भगवान मदन गोपाल को सबसे ज्यादा पसंद था उसी टगर पुष्प। भक्तिराज ठाकुर ग्रंथ में नरहरि चतुर्थ ठाकुर बताए, भक्त का मन में जो रहता है, भक्त हृदय अभ्यंतरस्थ ततोकुली समान, कहते कि भक्त का हृदय में जो रहता है भगवान उसको पूरा कर, क्योंकि उनका मन में ये विचार था कि हर दिन मैंने मदन गोपाल को ये सफेद पुष्प के द्वारा मैंने पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे को सफेद पुष्प टगर पुष्प मेरे को नहीं मिले हैं, मेरे को दूसरा कुछ पुष्प मिल गया, लेकिन मन में वो विचार था कि मेरे को सफेद पुष्प ही अर्पित करना है भगवान। तो भगवान भावोग्राही जनार्दन, उसी भाव को भगवान स्वीकार कर। इस तरीके से जीवन का अंतिम दिन तक वीरचंद्र प्रभु ये मदन गोपाल का सेवा की। और जब एकदम वृद्ध अवस्था प्राप्त हो गए थे वीरचंद्र प्रभु को, तब उन्होंने यह सेवा कर नहीं पाए, अपना ज्येष्ठ पुत्र गोपीजन वल्लभ को बुलाकर उसी विग्रह को अर्पित कर दिए, जिस विग्रह आज भी वर्तमान है ये वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, जिसका गांव का नाम है गोपीजन वल्लभपुर, उनका बेटा का नाम से हो गए गोपीजन वल्लभपुर, जिसका विग्रह में आज भी सेवा वगैरह होता है। दो साल तीन साल पहले करीब यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन संभव का ट्रस्ट है जो कि इस गोपीजन वल्लभ मंदिर को ले लिए और उसका सेवा भाव आज या इस्कॉन के द्वारा उसका सेवा करते चलते रहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। बिरचंद्र प्रभु को पर अगर किसी को अधिक जानकारी लेना है तो नरोड़ चंद्र ठाकुर का एक किताब है बहुत ही सुंदर, भक्ति रत्नाकर, जिसका भक्ति विकास महाराज अभी हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, थोड़ा दिन बाद उसका हिंदी ट्रांसलेट आ जाएगा, तो वो किताब आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्रा श्रीमद भागवतम की श्रील भूपाद की गौर प्रेम पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु चावदीदानं पावनित्वा वैष्णवेभ्यो।
हेलो।